हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम लोगों ने जो सेवा अपराध है उसके बारे में चर्चा किया था। अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न है अभी भी तो कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। वो लिस्ट है आपके पास, भारतीय सेवा अपराध का वो दिया था, फोटोकॉपी करके दिया के पास है। इसमें से कोई प्रश्न है किसी का, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो ये सेवा अपराध के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको हमें बड़ी गंभीरता से भी लेना है। और लेकिन अगर उद्देश्य हो कृष्ण का स्मरण करने के लिए, या कृष्ण की सेवा, कृष्ण का स्मरण करना या श्रवण कीर्तन इत्यादि, और उसके लिए अगर हमें कोई नियम तोड़ना पड़ता है तो नियम तोड़ना चाहिए, जिससे जो उस नियम का उद्देश्य है वो पूरा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया कि अगर आपके मान लीजिए घुटने में दर्द है और भागवतम का क्लास चल रहा है, तो फिर भी हम लोग जाएंगे वहाँ पर और कुर्सी में बैठेंगे, हालांकि हमारे पांव दिख रहे हैं डिटीज की तरफ। नहीं, पांव दिखा के नहीं बैठना चाहिए डिटीज को, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। कोई उद्देश्य क्या है, भागवत सुनना उद्देश्य हमारा। तो उस उद्देश्य से हम लोग ये नियम तोड़ सकते हैं, कहने का तात्पर्य हमारा, और तोड़ना चाहिए। और नहीं तोड़ते तो उसको नियम आग्रह कहा गया। तो रूप गोस्वामी ने बताया जैसे उपदेशामृत में कि नियम आग्रह अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संघर्ष लोलिमश षडवीर भक्ति विनश्यति। तो इन सब नियमों का उद्देश्य यही है कि भगवान का स्मरण किया जा सके, भगवान का चिंतन किया जा सके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे गायत्री के बारे में। जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था कि सत्व गुण में आना बहुत आवश्यक है, सत्व गुण में आना बहुत आवश्यक है। तो चाहे जितना अधिक हम लोग सत्व गुण में आएंगे उतना आसान होगा हमारे लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। जब मन रजोगुण से प्रभावित रहता है, तमोगुण से प्रभावित होता है, तो उस अवस्था में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्थिर मन से मंत्र का जप करना जो है बहुत लाभदायक होता है। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए साथ में हरिनाम लेना भी बड़ा आवश्यक है। हरिनाम लेने से क्या होता है, हमारा मन स्थिर होता है। और जैसे कि हमने बताया कि पांच रात्रि की विधि और भागवत विधि जो है साथ साथ चलती है। तो ये कुछ गायत्री के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विश्वराज के ठाकुर ने मंत्रार्थ दीपिका में लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने इसको कोट किया है चैतन्य चरितामृत में, गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वम तथा स्मृता। मतलब जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है वो क्रमशः क्या हो जाता है, भवसागर से, इस भौतिक भवसागर से छुटकारा पाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में ये मंत्र वो मंत्र है जो हमें भवसागर से छुटकारा दिलाता है, जिसके गान से हमें इसके गान से हमें क्या होता है, रक्षा मिलती है, भवसागर से छुटकारा प्राप्त होता है। गायत्री का मतलब ये है कि तीन संध्याओं में जिसका गान किया जाता है, और इसका गान करने से क्या होता है, हमें भवसागर से छुटकारा मिलता है। तो गायत्री स्वयं कृष्ण है। अभी आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग सालों में अलग अलग संस्थाओं में लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। अधिकांश लोग जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। आप जाएंगे अगर हरिद्वार में, बनारस में, या किसी भी जगह में, स्थानों में, तीर्थ स्थानों में, तो वहाँ पर अधिकांश आपको ब्राह्मण मिलते हैं जो ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करते हैं। गायत्री के लिए भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, गायत्री छंदसाम अहम छंदसाम, यानी कि कविताओं में मैं गायत्री हूँ। तो ये गायत्री मंत्र भगवत साक्षात्कार के लिए है, और ये गायत्री मंत्र हमें क्या दिलाता है,
स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति कराता है। जैसे हमने पहले बताया था कि गायत्री मंत्र जो है हमें स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति कराता है, लीला में प्रवेश कराता है, जिसको वास्तव सिद्धि कहते हैं। और उन प्राकट्य लीला से फिर हम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करते हैं और ये हरिनाम हमें ले जाता है, गोलोक वृंदावन में हमें प्रवेश कराता है हरिनाम। तो भक्तिवर ठाकुर ने इसलिए जोर दिया है दोनों पर। हरिनाम चिंतामणि में वो बता रहे हैं दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक नाम गुरु होते हैं और एक मंत्र गुरु होते हैं। या फिर नाम गुरु जो नाम दे रहे हैं आपको, हरि नाम दे रहे हैं, वही आपको मंत्र भी देते हैं बाद में। तो जो पहले शिक्षा देते हैं वो बाद में फिर दीक्षा भी देते हैं। तो गायत्री का उद्देश्य है कि परम भगवान कृष्ण की पूजा करना। तो कई गायत्री मंत्र हैं हमारे गौड़े संप्रदाय में। वैसे तो गायत्री मंत्र बहुत हैं, बहुत सारे गायत्री मंत्र हैं। जितने आप अर्चय वगैरह देखते हैं या जितने आप डीटीज देखते हैं, अलग अलग देवता भी, अलग अलग देवताओं के लिए भी अलग अलग गायत्री मंत्र है। इस पुस्तक के पीछे बहुत सारे गायत्री मंत्रों के बारे में बताया गया। श्रीमती राधा रानी के लिए भी गायत्री मंत्र है, बलराम जी के लिए भी गायत्री मंत्र है, पंच तत्व के लिए भी गायत्री मंत्र है, भगवान श्री राम के लिए भी गायत्री मंत्र है, हनुमान जी के लिए भी गायत्री मंत्र है, नरसिंह भगवान के लिए गायत्री मंत्र है, नारायण भगवान नारायण के लिए भी गायत्री मंत्र, लक्ष्मी जी के लिए भी गायत्री मंत्र, प्रहलाद महाराज के लिए भी गायत्री मंत्र है, तुलसी जी के लिए भी गायत्री मंत्र है, अनंत के लिए भी गायत्री मंत्र, सुदर्शन के लिए भी गायत्री मंत्र, गरुड़ के लिए है, रुद्र के लिए है, दुर्गा के लिए है, गणेश के लिए, कहने का अर्थ यह है जितने ईष्ट हैं सबके लिए गायत्री मंत्र है। भूमि गायत्री भी है, सूर्य गायत्री भी है, अग्नि गायत्री भी है, यम गायत्री भी है। तो ये सब इसका हम लोग जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस मंत्र के द्वारा हम लोग कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना। ब्रह्म गायत्री, ब्रह्म गायत्री का मतलब है जिसके द्वारा कृष्ण की आराधना होती है, जो कि भक्तों को उत्साहित करते हैं सेवा में। इन मंत्रों का अर्थ तो नहीं बताएंगे आपको, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। ये मंत्र बड़े गुप्त होते हैं, इसके लिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा और ब्राह्मण दीक्षा के उपरांत उसके बाद मंत्र के अर्थ के बारे में चर्चा की जा सकती है केवल उन भक्तों के साथ जो ब्राह्मण दीक्षित है। वो ये बड़ा आवश्यक है। और सामान्य तौर पर इसके जिस पीछे जो सिद्धांत है, दर्शन है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अन्यथा मंत्रों का अर्थ नहीं बताया जाता है जोर से, ना ही मंत्रों का उच्चारण जोर से होता है। लेकिन शास्त्रों में आपको मंत्रों का अर्थ प्राप्त होता है, और इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इन मंत्रों का अर्थ हमें दिया है, जैसे विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने दिया है। हमारे संप्रदाय में, गौड़े संप्रदाय में, हमें लगभग 5-6 मंत्र मिलते हैं, ब्रह्म गायत्री जिसको कहते हैं, बीज मंत्र भी मिलता है, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, गोपाल गायत्री जिसको गोपाल मंत्र भी कहते हैं, गायत्री मंत्र और काम गायत्री जैसे कहते हैं। और इन सब मंत्रों के पीछे बीज मंत्र भी होता है। और ब्रह्म गायत्री है जैसे हमने बताया कि जिसके द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, गुरु गायत्री है जिसके द्वारा हम गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्रे। तो गुरु कौन है? सेवक भगवान। जो उन्नत होते हैं वैष्णव, वो प्रत्येक गायत्री मंत्र में गुरु को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, मतलब वो गुरु का ध्यान लगा पाते हैं। कोई भी मंत्र का उच्चारण करे, गायत्री मंत्र का, भले ही काम गायत्री हो, गोपाल गायत्री हो, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें, उन मंत्रों में भी वो गुरु गुरु की उपस्थिति देखेंगे। वो देख सकते हैं कि इस मंत्र के पीछे जो मंत्र देने वाले हैं वो श्री गुरु हैं, और इस मंत्र के पीछे हमारे कौन है, इष्ट है, ये वो संबंध अपना जान सकते हैं। और फिर है गौर गायत्री। गौर गायत्री में हम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ध्यान लगाते हैं और गौर गायत्री के द्वारा हम लोग ये जान पाते हैं कि वास्तव में गौरंग महाप्रभु जो है, जिनको विश्वंभर के नाम से ही पुकारा जाता है, रक्षक हैं, पालक हैं पूरे संसार के। विशेष रूप से महाप्रभु के स्वरूप पर ध्यान लगाया जाता है, जो कि आपने देखा होगा अधिकांश मंदिरों में आपने भक्ति सिद्धांत सर के ठाकुर ने जो स्थापित किया है अर्चे वगैरह कई मंदिरों में, आपने देखा गौर राधा कृष्ण का विग्रह, जिसमें महाप्रभु एक हाथ ऊपर रखते हैं और दूसरे हाथ से कृपा बांट रहे हैं, है ना। तो वो रूप का ध्यान किया जाता है, विश्वंभर कहते हैं उसको। तो इस प्रकार एक गौर गायत्री और गोपाल गायत्री। गोपाल गायत्री तो बहुत ही प्रभावशाली है और सभी गायत्री मंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है गोपाल गायत्री। बृहद भागवतामृत में इसकी महिमा बताई गई है गोपाल गायत्री। गोप कुमार को जो है गायत्री मंत्र प्राप्त होता है, वो गोपाल मंत्र प्राप्त होता है अपने गुरु के द्वारा, जिसके उच्चारण से वो अनेकों लोगों से गुजरते हुए जाते हैं और अंततः अपने इष्ट की प्राप्ति होना होती है। ये गोपाल गायत्री है। महाप्रभु जाने से पहले केवल दो ही मंत्र प्रदान किए जाते थे हमारे संप्रदाय, गोपाल गायत्री और काम गायत्री। लेकिन फिर बाद में आचार्यों ने देखा कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और इन मंत्रों से ये मंत्र पर्याप्त नहीं होंगे, तो इसलिए फिर और भी गायत्री मंत्र जोड़े गए। तो गोपाल गायत्री विशेष रूप से उसमें तीन बातों पर विचार किया जाता है, संबंध, अभिधेय, प्रयोग। वेद में के तीन भाग है, वेद के द्वारा तीन विषयों के ऊपर चर्चा होती है, संबंध ज्ञान, अभिधेय तत्व और प्रयोजन। हमारा संबंध क्या है भगवान से, संबंध के विग्रह हैं मदन मोहन जी। जैसे हमारा संबंध स्थापित होता है भगवान से, तो मदन मोहन जी के रूप में प्रकट होते हैं भगवान संबंध। ये संबंध ज्ञान साबित होता है मदन मोहन जी के विग्रह के साथ, और गोविंद देव जी के विग्रह के समक्ष अभिधेय तत्व की प्राप्ति होती है। सेवा यानी भक्ति जिसको कहते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव जो हैं अधिकांश जो हैं, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो गोविंद देव जी की आराधना करते हैं, राधा गोविंद की पूजा करते हैं। और प्रयोजन प्राप्त होता है गोपीनाथ, ये प्रयोजन है हमारा। संबंध स्थापित का होने का मतलब यह है कि देहात्मक बुद्धि से ऊपर होना, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना। हमारा संबंध क्या है भगवान से हम जान पाते हैं, संबंध ज्ञान स्थापित होना, यानी कि ये एहसास कर लेना, ये अनुभूति होना कि हम स्वामी नहीं है, प्रभु नहीं है, हम क्या है, दास। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। वास्तव वास्तव में भक्ति प्रारंभ होती है जहां संबंध ज्ञान स्थापित हो जाता है। और ये वास्तव में एक दूसरे से इसका मेल है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो संबंध स्थापित होता है, और जब संबंध होगा तो हम सेवा करेंगे, और सेवा का फल होता है प्रयोजन, कृष्ण प्रेम जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन बातों पर विचार होता है गोपाल मंत्र के उच्चारण करते हुए। और काम गायत्री में व्यवहार की पूजा होती है, कृष्ण को काम देवी कहा गया है, और बद्ध जीवात्माओं को भगवान अपने प्रेमी लीला में प्रवेश दिलाते हैं। और जैसे जैसे भक्त उन्नत होता जाता है तो फिर वो श्रीमती राधारानी को भी देखता है इन मंत्रों में, जैसे काम गायत्री है, ब्रह्म गायत्री है, इन मंत्रों में वो श्रीमती राधारानी को भी देखता है। क्योंकि जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करते हैं, तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं ब्रह्म गायत्री के उच्चारण करने पर। अगर आप देखेंगे ब्रह्म संहिता में किस तरह से ब्रह्मा जी को एक गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को ये गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ पर वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में श्लोक संख्या 23 में, कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर पूर्व संसारों के अनुसार सृष्टि करने की चेष्टा की, किंतु वह सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देख पाए। सृष्टि के प्रारंभ में अंधकार छाया हुआ था और ब्रह्मा जी कुछ नहीं देख पाए। तब भगवान की दिव्य प्रयासी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तो ये गोपाल मंत्र दिया दिव्य सरस्वती, है ना। ये जो सरस्वती है ये श्रीमती राधारानी के विस्तार है, एक्सपेंशन, हाँ। तो गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ, अवश्य ही तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। और फिर क्या बोला, हे ब्रह्मा, तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेतादीप आदिपति गोलस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार की थी, गोलो की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है, उसी कर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान होकर अपने मुख मन से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियां उनकी अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमय बहिरंगा शक्ति द्वारा भी पूजित होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, तदनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के आठों कानों के मध्य माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्म योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। त्रिवेदमय गायत्री के स्वर्ण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तो काम गायत्री प्रदान किया गया। पहले उनको गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ, अब क्या प्राप्त हुआ, काम गायत्री प्राप्त। तो ये दो मंत्र प्राप्त हुए थे, जैसे हमने बताया यही मंत्र हमें परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे आता ना भागवत के प्रथम श्लोक में, तो यही है मंत्र उच्चारण के द्वारा। तो तपस्या करने के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी ने इन मंत्रों का उच्चारण किया और इस प्रकार उन्होंने तपस्या की। तो मंत्र जैसे उतारे थे हमें स्वरूप की प्राप्ति कराता, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन अवस्थिति। यहां तक लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी जब काफी लंबे समय तक इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो इनको एहसास हुआ धीरे धीरे कि वो क्या है, दासी है गोलोक वृंदावन में, मेड सर्वेंट, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने लिखा है तात्पर्य में, लेकिन उसके वो डिटेल्स में नहीं जा पाए, केवल आभास हुआ उनको अपने स्वरूप का ब्रह्मा जी को। तो इन मंत्रों के उच्चारण में बड़ा सावधान रहना पड़ता है। गायत्री मंत्र हो या हरे कृष्ण महामंत्र हो, हरिनाम हो, इनके मंत्रोच्चारण में बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी इच्छा होगी वो इच्छा ये मंत्र पूरा करते हैं। भौतिक इच्छाओं से अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, इन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जैसे 10 नाम अपराध है, 10वां नाम अपराध क्या है, 10वां नाम अपराध भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये नाम अपराध बताया गया, इसको भुक्ति नाम कहते हैं। वास्तव में वो नाम नहीं होता है, नाम अक्षर होता है, लेकिन अपराध जनित नाम भी हमें फल प्रदान करता है और उससे भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसे कहने का तात्पर्य यह है कि जब इन मंत्रों का उच्चारण हम करेंगे या करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं उससे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं साथ में हम सोच रहे हैं कि घर में क्या झगड़ा चल रहा है, ऑफिस में क्या हुआ, बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि जो आप विचार करेंगे, जो आप इच्छा करेंगे वो ये मंत्र पूरा कर देगा, वो इच्छा पूरा कर देगा, इच्छा पूरी करेगा। या हमारे बता रहे हैं, दो घटनाएं बता रहे हैं कि एक बार वो जब कहीं बाहर थे, शायद अमेरिका में से बता रहे हैं, कार्तिक मास के समय बता रहे हैं कि एक बार जब वॉक में गए थे वो, तो वहां पे पांव में उनको चोट लग गई और क्या प्रार्थना की उस समय महाराज ने, माय डियर लॉर्ड प्लीज अरेंज दैट दिस वुंड हील्स क्विकली एंड डज नॉट बिकम इन्फेक्टेड, क्योंकि बहुत गहरा घाव था तो उनको ऐसा लगा। तो ऐसा कब किया उन्होंने, गोपाल गायत्री का जब उच्चारण कर रहे थे तब ऐसा विचार आया उनका, और ऐसा करने पर कुछ समय के बाद बहुत ही जल्द उनका जो है घाव ठीक हो गया। और इसी तरह से वो हिमालय में गए थे, पहाड़ों में गए थे एक बार तीर्थाटन के लिए, तो वहां पर भी उनको चोट लगी थी, तो ऐसा लगा कि इसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ेगी और इन पहाड़ों में यहाँ पर कोई क्लिनिक भी तो नहीं है कि प्लास्टर लगा सके, तो वहां पर भी इस प्रकार गोपाल मंत्र का उच्चारण किया था इन्होंने, और इसके बहुत ही कम समय में मंत्र उच्चारण के बाद उनका घाव ठीक हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है, है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही है तो हम सोचें कि ये सर्वोच्च सिद्धि हमें प्राप्त हो गई है, है ना, जो हमने विचार किया था वो पूरा हो गया, ये मंत्र कितने शक्तिशाली है। इसलिए बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें गोप कुमार की कथा है, जिसमें वो अनेकों लोगों से गुजर के जाते हैं, स्वर्लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, शिव जी के लोक में जाते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश करते हैं, अयोध्या भी जाते हैं और वैकुंठ जाके अयोध्या भी जाते हैं, और उसके उपरांत फिर वो गोलोक धाम में भी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, ब्रज में जब जाके प्रवेश करते हैं तब जाकर उनको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वहां उनको अपने इष्ट की प्राप्ति होती है, अन्यथा उनको अनेकों पद प्राप्त होते हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी के लोग में जाते हैं उनको ब्रह्मा जी का पद मिल जाता है, कुछ समय के लिए वो ब्रह्मा जी भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। तो कई प्रकार का सुख है, विषय सुख जिसको कहते हैं, विषय आनंद, विषय आनंद, इस संसार के सुख की बात नहीं कर रहे, इस संसार का सुख जो है बहुत ही नगण्य सुख है, सुखी नहीं है, ये तो बिल्कुल कूड़ा है। देवता लोग जब यहां देखते हैं पृथ्वी लोग को, पृथ्वी लोग उनको एक कूड़ेदान के समान लगता है, तो इस पृथ्वी में तो वास्तव में कोई सुख है नहीं, स्वर्ग लोक में पृथ्वी के मुकाबले बहुत सुख, बहुत सुख, और इस प्रकार का स्थूल शरीर नहीं होता है, पृथ्वी से बना हुआ शरीर नहीं स्वर्ग लोक, अन्य सूक्ष्म जो और जो सूक्ष्म तत्व है उनसे वो शरीर प्राप्त होता है, इसलिए वहां का सुख जो है कई हजारों लाखों करोड़ों गुना जो है यहां से ज्यादा है, शौच क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, शरीर से दुर्गंध नहीं आता है, आपके गले में माला डाली जाती है सूखती नहीं है, और जो भी आप लेते हैं ग्रहण करते हैं प्रसाद वो खून में बदल जाता है पूरा, तो इस प्रकार की कई सुविधाएं हैं वहां पर, लंबी आयु है, स्वर्ग लोक में बहुत सुख है, अब ब्रह्मा जी के लोक में और सुख है, जितने ऊंचे लोक में आप जाएंगे उतने सुख सुविधा बढ़ती जाएगी, यानी कहने का अर्थ है उतने उतना माया का प्रभाव बढ़ता जाएगा, माया और शक्तिशाली होती जाती है जितना हम ऊंचे लोकों में जाते हैं। स्वर्ग लोक में जाएंगे ना, उससे और ऊपर जाएंगे, महर लोक में जाएंगे, जनक लोक में जाएंगे, तपो लोक में जाएंगे, इन सभी लोगों से गुजर के जाते हैं गोप कुमार। बृहद भागवतामृत में है जैसे कथा है कि गोप कुमार इन सभी लोगों से गुजर के जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाते हैं, कई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती गोपाल मंत्र के उच्चारण से। गोपाल मंत्र का उच्चारण करते हैं और उनको उस लोक में जाने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो भौतिक इच्छाओं की जो पूर्ति भगवान करते हैं। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते ही क्यों है ना। भगवान भौतिक इच्छाओं की पूर्ति इसलिए करते हैं ताकि अंततः हम लोग उनके चरणों की प्राप्ति कर सकें, उनके चरण कमलों की प्राप्ति हो, हमें हम समझ सकें कि वास्तव में जो भौतिक सुख है वो शाश्वत सुख नहीं है। यह एहसास दिलाने के लिए हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा किया जाता है। अब ध्रुव महाराज का प्रसंग देखिए, ध्रुव महाराज को भी नारद जी ने मंत्र प्रदान किया था और वो भी अर्चे वगैरह की सेवा में लगे थे। वृंदावन जब गए थे, वो ब्रज में जब गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने चतुर्भुज विष्णु का रूप बनाया और उनकी आराधना की, मंत्र उच्चारण किया। और हम जानते हैं किस कारण से वो जंगल आए थे, उनको क्या चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए था, ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा जी। अब जानते हैं ध्रुव महाराज जी के ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा जी है ना, स्वयंभू वनु के पिता ब्रह्मा जी, उत्तानापाद के पिता कौन है, स्वयंभू वनु। तो स्वयंभू वनवंतर की कथा है ध्रुव महाराज की कथा, और स्वयंभू वनवंतर की कथा हो या वैवस्वत मंत्र वनवंतर की कथा हो, मंत्र तो वही है, भगवान के नाम पवित्र नाम वही है। हालांकि उनको तो अलग मंत्र दिया था नारद जी ने, लेकिन वही भगवान विष्णु का ही मंत्र था। और उस मंत्र उच्चारण से ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्रसन्न किया, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। हाँ ये जरूर था उनके इष्ट जो है स्पष्ट थे, वो जानते थे कि वो किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। नारद जी ने उनको शिक्षा दी, नारद जी ने मंत्र देने से पहले भगवान के बारे में उनको बताया, भगवान के रूप और उनके गुण के बारे में बताया, भगवान के सौंदर्य के बारे में बताया। ये इसलिए बताया ताकि मंत्र उच्चारण करते हुए ध्रुव महाराज भगवान के उस सुंदर रूप के ऊपर ध्यान लगा सके। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी का ही हमें स्मरण होता है। तो जितना अधिक हम लोग हरिनाम लेंगे, जितना अधिक हम प्रचार करेंगे, जितना अधिक हम लोग सेवा में लगेंगे या साधना भक्ति जितनी हमारी अच्छी होगी, उतना ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में हमें सहायता मिलेगी। कहने का तात्पर्य है, सुबह की साधना इसलिए आवश्यक है कि प्रातः काल हमारा रजोगुण जो है वो शांत होता है, सत्वगुण की प्रधानता होती है, तो उस समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सरल होता है और अपने ईश्वर पर ध्यान लगाना बड़ा सरल होता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में बड़ा अच्छा एक प्यार है, यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मागे यही बड़ा मूर्ख। कृष्णा सेज इफ वन एंगेजेस इन माय ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस बट एट द सेम टाइम वांट्स द ऑपुलेंस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, ही इज वेरी वेरी फुलिश इंडीड, ही जस्ट लाइक अ पर्सन हु गिव्स अप एम्ब्रोजिया टू ड्रिंक पॉइजन। किसी को अमृत मिल रहा है उसको छोड़ के अगर बोले कि नहीं मुझे विष चाहिए, या सोने के प्याले में आप विष पिलाइए मुझे, सोने के प्याले में विष पीने से थोड़ा अमृत हो जाएगा, है ना। तो इस संसार में जो लोग हैं, अधिकांश विषयी लोग हैं, वो सोने के प्याले में विष ही पी रहे हैं और सोचते हैं कि वह अमृत है। आमी विज्ञा यही मूर्खे विषय केना दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएवा। सिंस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, वाई शुड आई गिव दिस फूल मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, instead I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. तो ऐसे लोगों को भुक्ति कामी कहा गया। भुक्ति सिद्धि क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। तो ये सारे के सारे अशांत है क्योंकि ये सारी भौतिक इच्छाएं हैं। ज्ञान और कर्म का मिश्रण, इन भौतिक इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि भगवान नहीं चाहते कि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भगवान इतना नहीं करते कि वो भक्त उन्हीं को ही भूल जाए। तो इसे यहां एक श्लोक दिया गया है, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निणाम नैवार्थ दो यत पुनर्थिता यथा स्वयं भिदते भजता अनिच्छिताम इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड फुलफिल द मटेरियल डिजायर्स ऑफ डिवोटी अप्रोचेस हिम विद सच मोटिव्स बट इट डज नॉट बेस्टो बेनेडिक्शंस अपॉन डिवोटी दैट विल कॉज हिम टू डिमांड मोर बेनेडिक्शंस अगेन। चलो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई, अब और मांगूंगा और मांगूंगा, और डिमांड करते जाएंगे, क्योंकि एक बार इच्छा पूरी क्या करती भगवान ने, अब बार बार जाएंगे हम राधा पार्षद के पास अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। हाउएवर लॉर्ड विलिंगली गिव्स अ डिवोटी शेल्टर ऑन लोटस फीट इवन दो सच अ पर्सन डज नॉट एस्पायर फॉर इट एंड दैट शेल्टर सेटिस्फाई ऑल हिज डिजायर दैट इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी स्पेशल मर्सी। तो ध्रुव महाराज के साथ क्या हुआ? ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी की, उनको ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक, पोल स्टार जिसको कहते हैं, तो ये जो पोल स्टार है ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। और ये ऐसा लोक है जो महाप्रलय के बाद भी रहता है और ये भौतिक जगत के भीतर है, इसका कभी संहार नहीं होता। और यहां पर ध्रुव महाराज सदैव भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं। ये ध्रुव लोग इस भौतिक संसार में रहते हुए भी क्या है, वैकुंठ का स्थान है, वो भी वैकुंठ ही एक तरह से ध्रुव लोग। तो ब्रह्मा जी से ऊंचा राज्य हो गया कि नहीं हो गया? तो ब्रह्मा जी का लोग तो ध्वस्त हो जाएगा लेकिन ध्रुव लोग रहेगा, लेकिन है तो फिर भी भौतिक जगत में ना, जो भी हो। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पर रहकर भी भौतिक इच्छा से रहित हैं ध्रुव महाराज। इसी तरह से हम देखते हैं बलि महाराज को, बलि महाराज को सुतल लोक में भेजा गया भगवान के द्वारा, उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। इंद्र भी भाग गए थे स्वर्ग लोक छोड़ गए, वो भी वहां पर भी अपना राज्य जमा लिया। भगवान वामन देव प्रकट हुए और बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया, उनको सुतल लोक में भेज दिया। लेकिन सुतल लोक में जो सुख है वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा वहां पर सुख है। सुतल लोक का जो सुख है वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा वहां सुख है। लेकिन सुतल लोक में जाने के बाद बलि महाराज अब वहां पे, क्योंकि वो भौतिक इच्छा नहीं है, वहां पर भगवान का वो दर्शन निरंतर प्राप्त, भगवान वामन देव वहां पर द्वारपाल के रूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं, ध्रुव महाराज बलि महाराज की रक्षा कर रहे। तो इस तरह से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है कि अंततः भौतिक इच्छा रहती नहीं है, भौतिक इच्छा रहती नहीं। तो इस प्रकार से भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। ये भौतिक इच्छाएं फिर वो जो है भक्ति में, भौतिक सुविधाएं जो है वो फिर भक्ति में बाधा नहीं डालती हैं, और फिर भक्त जो है इसी को ही, इन्हीं सुविधाओं को भगवान की सेवा में लगाता है। अब समझ, अनासक्त से विषयान यथारो उपयंजिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मुच्यते। तो वो भक्त समझ जाता है कि इसका संबंध भगवान से है और क्योंकि स्वयं वो विषयों से अनासक्त हो चुका है, वो ऐसे वस्तु को भगवान की सेवा में लगा पाता है, ये जानते हुए कि किसका संबंध भगवान से है। तो इसलिए हम ये बताना चाह रहे थे कि भौतिक इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन यह हमें आशा नहीं करती है कि मंत्र का उद्देश्य ही है। इसलिए भक्तिवेद ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हरिनाम चिंतामणि, चिंतामणि, जिसका आप चिंतन करेंगे वो आपको हरिनाम ला के दे देगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन जिस भक्त के ऊपर विशेष कृपा होती है तो भगवान धीरे धीरे सब कुछ फिर छीन लेते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। यस्याह मनोग्रहामि हरिष्ये तद् धनं शनैः। तो भगवान जिसके ऊपर विशेष अनुग्रह करते हैं उससे सब कुछ छीन लेते हैं धीरे धीरे। बलिवारा से सब कुछ छीन लिया, विशेष अनुग्रह भगवान का, विशेष भगवान की विशेष कृपा हुई, तीन पग से ही उन्होंने सभी दिशाओं को नाप लिया, दो 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 पग से नाप लिए और एक पग उन्होंने उनके सर पर रखा। तो इस प्रकार यानी कि भगवान देखते हैं कि जब अगर भक्त जो है इन सुविधाओं से, भक्ति मार्ग से हटेगा नहीं तो फिर भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। भक्त जब प्रारंभिक अवस्था में आते हैं तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि उनको सुविधाएं मिल रही है, वो इसलिए मिलती है सुविधाएं ताकि भक्त जो है भक्ति प्रारंभ कर सके, क्योंकि अभी वो इतना प्राकृत अवस्था में है कि उसको कोई ना कोई सुविधा तो चाहिए भक्ति करने की। और कलयुग में अधिकांश जीव ऐसे ही है, इसलिए प्रभुपाद ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी, सेमिनार हॉल दिया, एयर कंडीशन, ताकि हम लोग आराम से बैठकर कि गर्मी ना लगे हम गायत्री मंत्र के बारे में सुन सके, है ना। भूख लग रही है तो गोविंदास खोल दिया या फीस प्रसाद हो गया, रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यानी कि चार आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस संस्था में रहकर उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये चार आवश्यकताएं वैसे ही पूरी हो जाती हैं। प्रभुपाद ने ये सुविधा हमें प्रदान की है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जीवन का उद्देश्य है कि अब तो हमें सब सुविधा प्राप्त हो गई है, अब हम लोग संतुष्ट हैं, अब हम सेटल हो चुके हैं, है ना। इस भौतिक संसार में अब कभी हम सेटल नहीं हो सकते, ये केवल हमारा क्या है, एक भ्रम है। अब हम सेटल हो गए हैं, आश्रम में बहुत अच्छी जगह मिल गई है, हमारा अच्छा कमरा है, अलग सारा फैसिलिटी है, सारे अरेंजमेंट हो गया है, मंदिर के पास ही घर है, सारी सुविधा है, आने जाने के लिए गाड़ी भी है, मोबाइल फोन भी है हमारे पास ताकि हम सबसे बात कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर वेल सेटल्ड, है ना। डोनेशंस भी आ रहे हैं, तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं हमारा। प्रभुपाद ने ये संस्था भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए की है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। क्योंकि कई बार भक्त आते हैं प्रारंभ में गंभीर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो मार्ग से भटक जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग शायद गलत रास्ते में थे शुरू में, भक्ति उद्देश्य नहीं है, अब तो हमारी जो इच्छाएं वो पूरी हो रही है, तो हम सेटल हो चुके हैं। तो इसलिए भगवान गीता में बता रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। अगर हम यही चाहते हैं तो वही मिलेगा। तो ये हमारी जो संस्था है वो भी कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी जो इच्छा होगी वो इच्छा पूरी होगी इस संस्था में। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के ये प्राकृत भक्त मेरा भजन करते हैं, प्रयास करते हैं भजन करने का। ये सब प्राकृत अवस्था में है, ये चारों के चारों प्राकृत अवस्था में आते हैं, भौतिक इच्छाएं लेकर आते हैं। कोई ज्ञानी है, कोई जिज्ञासु है, कोई दुखी है, कोई धन की इच्छा से आ रहा है, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए आ रहा है, भजन करते करते या मंत्रोच्चारण करते करते यश की इच्छा हो रही है, हरि नाम ले रहे हैं यश की इच्छा हो रही है, तो यश तो मिल जाएगा, अनुयायी भी मिल जाएंगे, चारों तरफ से गुणगान भी हो जाएगा, लेकिन जो मंत्र का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। जिस कारण से हमें हरिनाम लेना शुरू किया था वो इच्छा पूरी, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी प्रयाग में 10 दिन, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि प्रारंभ में तो भक्ति लता बीज बोया और ये भक्ति लता बीज की जो शाखाएं वो बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार उसमें से उप शाखा भी आ जाती है। उप शाखा का कारण क्या होता है, जो असली शाखा है मूल शाखा वो ढक जाती है, उप शाखा ये है कूटी नाती कपट है ना, जीव हिंसा कूटी नाती और लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा, यश कमाने की तीव्र इच्छा। तो ये जब आ जाता है भक्ति मार्ग में तो जो मंत्र उच्चारण करते हैं हम लोग उसका वास्तव में लाभ नहीं मिलता है, वास्तविक लाभ नहीं मिलता है, अभी तो होता क्या है कि वो इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर प्रशंसा आपको मिल जाएगी, गुणगान आपका हो जाएगा, कई आपके अनुयायी भी हो जाएंगे, कई फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने हरिनाम से यही मांगा, हरिनाम प्रभु से आपने मंत्रों का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, मंत्र उच्चारण करते समय आप इसी का ही चिंतन कर रहे हैं कि उसने मुझे क्यों आदर नहीं दिया, वहां लोग क्यों नहीं आए, वहां प्रशंसा क्यों नहीं हुई, वहां माला क्यों नहीं पहनाई गई, उसे मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते यही चिंतन कर रहे हैं, तो फिर मंत्र आपको दे देगा, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा देखिए कितना अच्छा प्रचार हो रहा है हमारा, हम सोचेंगे प्रचार का कार्य बढ़ रहा है, हमारा प्रचार कितना बढ़ गया, हजारों लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। इसलिए भक्ति स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एक सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, और फॉलोअर्स इकट्ठे करना ये अलग सब्जेक्ट है, नहीं तो महाप्रभु क्यों बोलते ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित गीत वे। चैतन्य महाप्रभु जो बोला है वो बोला है, केवल बोलने के लिए नहीं, ये वास्तव में ये सच बात, जिसकी रुचि होगी नाम में वो इन सब की कामना नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, जिसके नाम में रुचि नहीं है वो ये दिन रात यही चिंतन करेगा कि कैसे मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर बढ़ाऊं, कैसे मेरे सामने आगे लोग पीछे लोग भागे, अन्यायी कैसे बढ़े, यश कैसे तीनों लोकों में फैले मेरा। तो मंत्र उच्चारण के द्वारा हम इष्ट की सेवा नहीं करना चाहते हैं अपितु स्वयं ही इष्ट बनना चाहते हैं, अंग्र उपासना कहते हैं इसको, अंग्र उपासना शास्त्रों में लिखा, अंग्र उपासना, उपासना हम अपने इष्ट के नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी उपासना कर रहे हैं, स्वयं की उपासना कर रहे हैं, ध्यान हम नहीं लगा रहे भगवान में लेकिन ध्यान अपने ऊपर ही लगा रहे हैं, अपना स्मरण कर रहे हैं मंत्र उच्चारण करते समय, तो ऐसे में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो लेकिन वो जो इच्छा कर रहे हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और भौतिक इच्छाएं जल्दी पूरी होती है, जैसे कई लोग गोवर्धन जाते हैं गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करते हैं गोवर्धन, है ना, हजारों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है, संतान के लिए, धन के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए जाते नहीं लोग, बाकी बिहारी का दर्शन करते हैं दर्शन, बाकी बिहारी जी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, दिल्ली में आप जाइए सब लोग बाकी बिहारी जानते हैं, राधा पार सारदी नहीं जानते, सब बाकी बिहारी सारे जानते हैं, वृंदावन जाते सीधे बाकी बिहारी, क्योंकि 10 बजे दर्शन देते हैं बाकी बिहारी आपकी सुविधा के अनुसार, मंगल आरती 9 या 10 बजे होती है शनिवार, और जो आपकी बौद्धिक इच्छा है वो बौद्धिक इच्छा की पूर्ति भी होती है बाकी बिहारी के पास, तो बाकी बिहारी इसलिए सबसे फेमस है ना, इसी तरह से गिरिराज जी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन जो वास्तव में कृष्ण प्रेम चाहते हैं उनकी तो बहुत ही लंबी लाइन है और बहुत पीछे खड़े होना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ता है। तो गिरिराज जी सबको दे देते हैं, लेकिन जो कृष्ण प्रेम मांगने के लिए आया है उसको काफी लंबे समय तक रुकना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह निश्चया तो ठीक है, लेकिन साथ में धैर्य होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है, ये भौतिक इच्छाओं के ऊपर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे और भी एक बात बताई गई है, यद्यत धिया त उर्गाय विभावयंती तत्त्वत बपु प्रणयशे तत् अनुग्राय। इसका अर्थ ये है कि जब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसका हम उच्चारण कर रहे हैं, किसको हम पुकार रहे हैं। ये नहीं आप गणेश जी के सामने बैठ गए और गायत्री मंत्र कर रहे हैं। मंत्र में ध्यान किसका लगाया जा रहा है, मंत्र का ध्यान। जैसे एक लोकनाथ महाराज से बुक लिख रहे हैं, पता नहीं वो बुक पब्लिश करनी हुई, तो उसमें उन्होंने एक जगह पिक्चर दिखाया, उसमें दिखाया एक भक्त गा रहा है हरि हराय नमः कृष्ण यादव आय नमः। अब हराय तो नहीं है उसमें, वो हरे ये है ना, लेकिन गाते हुए ऐसे गा रहा है, वो गाया तो शिवजी प्रकट हो गए। तो शिवजी ने बोला कि हाँ आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गया, तो जिसको आप बुलाएंगे वो पहुंच जाएंगे आपके पास। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए हम किसको पुकार रहे हैं। द स्टेटमेंट हियर दैट द लॉर्ड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ बिफोर द डिवोटी इन द फॉर्म इन विच द डिवोटी लाइक्स टू वर्शिप हिम इंडिकेट्स दैट द लॉर्ड बिकम्स सबॉर्डिनेट टू द डिजायर ऑफ द डिवोटी सो मच सो दैट ही मैनिफेस्ट पर्टिकुलर फॉर्म द डिवोटी डिमांड्स। महाप्रभु यही वेंकट भट्ट को बोला, एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक ही विग्रह करे नानाकार रूप। यहां देखिए चतुर्भुज विष्णु के ऊपर भी ध्यान लगाते हैं। वेंकट भट्ट ने ही बोला कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, देखा जाए तत्व में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये कह देना कि अगर लक्ष्मी जी कृष्ण के पास गई है तो क्या अंतर है इसमें, कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है, कोई भेद नहीं है, तत्व तो एक ही है। तो लक्ष्मी जी अगर चली जाती हैं कृष्ण के पास ढूंढने के लिए, उनको वृंदावन चली जाती हैं, तो इसमें क्या गलत है। तो फिर महाप्रभु मुस्कुराते हुए यही बोलते हैं, अगर अंतर नहीं है तो फिर वैकुंठ का ऐश्वर्य क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, वो वैकुंठ का ऐश्वर्य क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। ऐश्वर्य भाव जो है वैकुंठ का लक्ष्मी जी क्यों छोड़ना चाहते हैं और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है विष्णु को छोड़कर। अगर एक ही है तो फिर वैकुंठ में रहना चाहिए, और फिर कृष्ण के पास क्यों जाते हैं। तो इसलिए भेद ना होते हुए भेद है, एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक ही विग्रह करे नाना कर रूप। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, डिफरेंट फॉर्म्स आर मैनिफेस्टेड ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट डिवोटीज। एक्चुअली द लॉर्ड इज वन बट ही अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स जस्ट टू सेटिस्फाई डिवोटीज। महाप्रभु वेंकट भट्ट गोस्वामी को बोल रहे हैं। श्रीरंगा में जब गए थे तो वह वेंकट भट्ट से मिले थे। जैसे महाप्रभु एक उदाहरण दिया इसमें कि जैसे वैदुरी मणि होता है, स्फटिक भी जिसको कहते हैं, वैदुरी मणि जो होता है पास में जो ऑब्जेक्ट होगा वो जिस रंग का होगा वो रंग खींच लेगा। लाल रंग का कोई, लाल रंग की कोई वस्तु होगी तो लाल दिखाई देगा आपको वैदुरी मणि, और नीले रंग की वस्तु होगी तो नीला दिखाई देगा। यानी कि भक्त का जो भाव है उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये यथामाम प्रबद्धन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। तो ये यहां पर बताया स्थाना विशेषाद प्रकाश आदि वत एज सन्स रेस आर परसीव डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस द सेम वन लॉर्ड इज ऑल्सो परसीव इन वेरियस वेज। यही रूप चिंते दास से रूप होए, एज अ सर्वेंट मेडिटेट्स ऑन द लॉर्ड विल रिवील दैट स्पेसिफिक फॉर्म। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, ये कथा है जीव गोस्वामी सुना रहे हैं। इस कथा में ये बताया कि एक बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम था विश्वक्षेन, विश्वक्षेन। तो एक बार वो एक जंगल में प्रवेश किए और वहाँ पे एक जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल ट्राइब आदिवासी लोग नहीं होते हैं, तो उनके मुखिया का लड़का था और वो था शिवजी का भक्त। तो उस दिन बीमार होने के कारण, सर में दर्द होने के कारण, उसने इस ब्राह्मण को कहा, कि ब्राह्मण को देखते हुए कि ये ब्राह्मण बड़ा दक्ष लगता है और ये नाना प्रकार की पूजा कर सकता है, तो ब्राह्मण से कहा कि आप क्या करें, हमारे पास शिवलिंग है, उसकी पूजा करें। तो ब्राह्मण ने कहा, विश्वक्षेन ने कहा कि मैं तो देखो हरि का भक्त हूँ, विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं की आराधना मैं करता हूँ, तो आप किसी और से पूजा करा लें शिव जी की। तो जब लड़के ने सुना तो बहुत गुस्से में आया, उसने तलवार उठाई, उसने अगर आप पूजा नहीं करोगे तो मैं आपका गर्दन उड़ा दूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, वो अपना आध्यात्मिक जीवन भी सुरक्षित रखना चाहते थे, साथ में ये नहीं चाहते थे कि शरीर छोड़ना पड़ जाए उनको, ये मार देंगे मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रयास करूंगा। तो शिवलिंग के सामने बैठे वो ब्राह्मण और मंत्र उच्चारण करने लगे, और जब मंत्र उच्चारण किया तो उस समय उन्होंने सोचा शिवलिंग तो तमोगुण के अधिष्ठाता है और भगवान नरसिंह देव जो है तमोगुण को दूर करते हैं, है ना, और विघ्न को दूर करते हैं, तो ठीक है मैं शिव जी की पूजा करूंगा, लेकिन मैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये विघ्न दूर करें और उनका ध्यान लगाता हूं। तो ने मंत्र का उच्चारण किया, ओम ह्रीम श्रोम उग्रम भीरम महाविष्णु। तो इस तरह से उन्होंने विष्णु मंत्र का उच्चारण किया और क्या हुआ, शिवलिंग से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया तो वो जो लड़का था उसको बड़ा गुस्सा आया और तलवार फिर से उठाया उसने और वो मारने के लिए तैयार हो गया। तो इससे पहले वो मार देता, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए शिवलिंग से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो ये शिवलिंग अभी भी है दक्षिण भारत में, इसको लिंग स्फोट कहते हैं, लिंग स्फोट नरसिंहदेव, लिंग स्फोट स्फोट नरसिंहदेव। तो इस प्रकार इस कथा के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग, तो इसलिए जो हमने तो बताया था शुरू में, कर्मकांडी जो ब्राह्मण है वो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। तो ब्रह्म गायत्री में हो सकता है कोई सूर्य देव की पूजा करे, कोई हो सकता है सूर्य नारायण की पूजा करे, और कोई हो सकता है वो कृष्ण की पूजा करे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार इन बातों को समझना है, तो धीरे धीरे हम बताएंगे और आपको इसके बारे में, ये तो केवल आज थोड़ा सा हमने दर्शन बताया और किस तरह से इन मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए गायत्री मंत्र के उच्चारण में, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज के। हाँ जी, सूर्य से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें जो शब्द आता है सविता, उस सविता का मतलब होता है सूर्य देव। लेकिन सविता जो संस्कृत में भाषा ऐसी है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, और गौड़िया संप्रदाय में हम सविता का मतलब बताते हैं कृष्ण। ये सूर्य है, इसके द्वारा ही जितने भी और ग्रह हैं ये संचालित हैं, जितने और प्लैनेट्स हैं वो सस्टेन करते हैं सन के कारण। लेकिन कृष्ण क्या है, ही सुप्रीम सन, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनके ऊपर आश्रित है। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, तो हमारे लिए तो सविता परम भगवान श्री कृष्ण है, जिनके कारण जो है तीनों लोक जो है या अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो संचालित है। तो सूर्य सविता का अर्थ मतलब होता है, एक अर्थ ये भी है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति को भी सविता कहते हैं, सविता को सूर्य भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, और जीवात्मा को भी सविता कहा जाता है, कई बार इस बुद्धि को भी सविता कहा जाता है, सरस्वती देवी को भी सविता कहा जाता है। इस तरह से अग्नि देव, सूर्य देव, इन सब को भी सविता कहा जाता है, सूर्य नारायण को भी सविता कहा जाता है, परमात्मा को भी सविता कहा जाता है। तो आप आपके ऊपर है, आपको किस पे ध्यान लगाना है। इसलिए सविता मतलब हमारे लिए परम भगवान कृष्ण है, जो कि जिनके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, जो कि तो सभी जीवात्माओं के क्या कहते हैं, लाइफ है वास्तव में, इज एक्चुअल लाइफ ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, है ना। उन्हीं के कारण जो है समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो संचालित है, सस्टेन हो रहा है। तो ही इज दैट सन, सो वी आर मेडिटेटिंग ऑन दैट सन। तो इस प्रकार इसको समझना है, लिटरली मीनिंग तो यही लगेगा आप जैसे कि दिया हुआ उसमें, लेकिन यह इसका कॉन्फिडेंशियल मीनिंग। नहीं, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, संध्या के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, किस तरह से इसका उच्चारण करना है, संध्या का क्या महत्व है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे अलग से, आज का टॉपिक ये नहीं था। ठीक है, गुरु का ध्यान भी लगाया जाता है तीन बार, गुरु अष्टकम तीन बार बोला जाता है, केवल मंगल आरती के समय नहीं, इस तरह से गुरु का ध्यान लगाया जाता है तीन बार। ये संध्या, तीन संध्या होते हैं, जंक्शन पीरियड, संध्या का मतलब शाम का वक्त नहीं, संध्या का मतलब जंक्शन पीरियड, जैसे बोलते हैं ना वो भगवान नरसिंह देव, ये दिन है ना रात है ना, है ना, ना घर पे है ना बाहर है तो उसको जंक्शन संध्या कहते हैं। इसी तरह से दोपहर का समय, 12 बजे का जो समय होता है उसको भी संध्या कहते हैं, जंक्शन पीरियड कहते हैं। इसी तरह से प्रातः काल 6 बजे, ये भी जंक्शन पीरियड होता है। गुरु अष्टकम जो प्रातः काल हम गाते हैं, ब्राह्म मुहूर्त के समय गाते हैं, उसका महत्व अलग है। ठीक है, वो हम बताएंगे बाद में, अभी अलग से उसका सेशन है और उसमें डिस्कस करेंगे। किस बारे में नहीं क्लियर होना चाहिए, कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, प्रभुपाल ने हमें ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और गुरु वही बात दोहरा रहे हैं। ये जो मंत्र है इसमें तो कृष्ण का ही नाम आता है, ये मंत्र एक फॉर्मूला की तरह है, वास्तव में देखा जाए ये मंत्र भी नाम है, मंत्र में भी तो भगवान का नाम ही है, और किसका नाम है, कृष्ण का ही नाम है। तो ये जो ईष्ट हमारे जो है वो कृष्ण ही है, आराध्य ईष्ट जो गौड़िया संप्रदाय के भक्तों का है वो कृष्ण ही है। लेकिन कई ऐसे भक्त होते हैं जो समय आने पर उनको पता चलता है, स्वयं अभ्यास करते करते, साधना करते करते पता चलता है कि वास्तव में उनका जो भाव है भगवान के किसी अन्य रूप में है, जैसे भगवान राम के रूप में ध्यान रहता है, किसी का नरसिंह भगवान की तरफ रहता है, किसी और रूप में रहता है ध्यान। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कम से कम थियोरेटिकल प्लेटफॉर्म में हमारा अंडरस्टैंडिंग यही होना चाहिए कि जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ये हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का फॉर्म कंप्लीट है, और अगर आपका भाव कुछ और भी होगा तो वो अपने आप ही प्रकट होगा बाद में समय आने पर। लेकिन प्रारंभ अवस्था में हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि इन मंत्रों के द्वारा, हरि नाम के द्वारा हम कृष्ण का ही ध्यान लगा रहे। नहीं, उसमें भी हम लोग गौर गायत्री का उच्चारण तो करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही है। गोपाल मंत्र के द्वारा कृष्ण का ध्यान लगाया जाता है, गौर गायत्री के द्वारा महाप्रभु के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, तो दोनों ही है। और कुछ
प्रभु जी, भक्ति को हम नहीं चाहते कि हमारे लता के साथ, बट अनजाने में अपने आप वो गलत हो जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें?
उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जंगली पौधा होता है जैसे है, अगर आपको जमीन को उपजाऊ बनाना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस जमीन में जंगली पौधे कितने हैं, उनको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। नहीं तो आप बीज डाल देंगे, अंकुरित होगा, लेकिन साथ में जो जंगली पौधे खा जाएंगे वो बढ़ने नहीं देंगे उसको। तो ये जो जंगली पौधे हैं इनको जल्द से जल्द उखाड़ देना चाहिए, या भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। आकर्षण होता है लेकिन उस आकर्षण की तरफ प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए। ऐसे मान लीजिए यश कमाने की आपकी इच्छा है, आप हरि नाम ले रहे हैं, अब दूसरा होता है उसके ऊपर एक्शन लेना। और जितना हम लोग स्ट्रांग रहेंगे कि हम ऐसा नहीं चाहते, तो आपका जो इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस डिमांड को अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो फिर वो जो डिजायर्स है वो स्ट्रांग हो जाए, फिर आप और इच्छा पूरा करने लगेंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे अग्नि में आप घी डालते जा रहे हैं तो अग्नि और जलती जाएगी, इसी तरह से है, फ्यूल डालते जाए फायर में तो और अग्नि बढ़ेगी। तो थोड़े से अगर आपकी यश कमाने की इच्छा है, आप सोचते हैं नहीं थोड़ा सा और यश कमा लो, नहीं थोड़ा और कमा लेता हूं यश, फिर तो इतना ज्यादा फंस जाएंगे, फिर वो जाल से बाहर निकलना मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, इम्पर्सनलिज्म इज द लास्ट लेयर ऑफ माया, या टू बिकम वन विद गॉड इज लास्ट लेयर ऑफ माया। एकत्व की प्राप्ति होना, भगवान के साथ एकाकार होना। मंत्र का उच्चारण मैं किस लिए कर रहा हूं? भगवान के साथ एक होने के लिए। बड़ा खतरनाक है कि नहीं? तो आपको इस प्रकार की भावना मिल जाएगी, मंत्र से आपने यही मांगा है, कृष्ण कृष्ण जैसे बन जाना, या कृष्ण, या फिर आचार्य बनने की इच्छा, गुरु बनने की इच्छा। जैसे भक्त ठाकुर बता रहे हैं, केशी दमन की लीला सुनने से यह अनर्थ दूर होता है, इल्यूजन दूर होता है, आचार्य बनने की जो इच्छा है वो दूर होती है। तो ये आचार्य बनने की इच्छा, गुरु बनने की इच्छा, या हम गुरु बन गए ये समझ लेना, या आचार्य बन गए ये समझ लेना, तो इस प्रकार के जो अनर्थ हैं अगर दिखाई पड़ रहे हैं हमें, थोड़ा सा भी इसका आभास हो रहा है, उसको उसी समय खत्म करना चाहिए, वैष्णव सेवा के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा, वो ये हमारे इस अनर्थ को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये जो भक्ति मार्ग है बहुत ही सरल लगता है, लेकिन है बड़ा खतरनाक भी साथ। अगर हम थोड़ा सा भी मार्ग से भटकते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है, रेजर्स एज बोलते हैं, जैसे तलवार की धार कट भी हो सकता है। तो हमारा इसलिए बहुत आवश्यक है साधु संग, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। ये शास्त्र साधु संग में हमें बार बार ये विचार करने को मिलता है, समझने को मिलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने इंटेलिजेंस को शार्प करना है शास्त्र अध्ययन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, जिसके माध्यम से इस अज्ञानता को हम समय समय पर काट सके। अगर हमारी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, कुशाग्र नहीं होगी, तो ये फिर माया का प्रभाव पड़ेगा। शास्त्रों के अध्ययन से हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग माया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति नहीं है। देखने में लगेगा भक्ति कर रहे हैं, और देखने में लगेगा कि बहुत प्रचार हो गया, हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं, है ना, 5,000 लोग हैं आगे पीछे माला लेके घूम रहे हैं, हम सोच रहे भीतर से कितने वो कितना बड़ा प्रचार हो गया है ना। तो फिर अपने को उत्तम वैश्य की कैटेगरी में डालना चाहिए, क्या पोटेंसी है देखिए। तो हम सोचेंगे स्पिरिचुअल पोटेंसी है, लेकिन वो हो सकता है हमारे अनर्थ ही प्रकट हो रहे हैं। और ऐसे लोग ऐसे भक्त का गुणगान भी उस तरह से करेंगे जिसके लिए वो लायक नहीं, और वो स्वीति भी सोच रहा है कि मैं लायक, दोनों ही भ्रमित है। इस तरह के अनुयायी और उस तरह के गुरु, वो दोनों ही भ्रम में है। वो गुरु सोच रहा है, तथाकथित गुरु सोच रहा है या भक्त सोच रहा है कि वो आचार्य है और वो सम्मान के लिए क्या कहते हैं योग्य है, और तथाकथित जो फॉलोअर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि आचार्य है। तो दोनों ही भ्रम में है ना। अंधा यथान देर उपनीय मानस, दोनों ही ब्लाइंड है। इसलिए इसलिए बहुत जरूरी है साधु संघ। साधु संघ में क्या है, शास्त्रों के अध्ययन करने से हमें यह निरंतर ये ज्ञान होता रहेगा कि अभी हम भक्ति में बहुत पीछे हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन चरित्र को पढ़ें, षड गोस्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ें, प्रभुपाद जी की लीलावृत पढ़ें, प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है। आचार्य अगर अपने आप को मानते हैं तो जाए बॉरी स्ट्रीट में हिप्पीज की सेवा करें, उनके झूठे बर्तन धोए, है हमारे पास हिम्मत, प्रभुपाद जी की हम नकल करेंगे, गुरु की नकल करेंगे। आचार्य का मतलब क्या होता है, जो शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, जो गुरु के लिए समर्पित है, वो देखते पहचान जाएगा ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है, ये वास्तव में इतना उन्नत नहीं है जितना लग रहा है देखने में। या स्वयं को भी अपने आप को सोचने लगा कि मैं इतना उन्नत नहीं हूं जितना मैं सोच रहा था जब मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ा। क्या था उनका वैराग्य, क्या था उनकी तपस्या। हम परंपरा की बात करते हैं, ये है हमारी परंपरा, ये हमारी परंपरा है। निद्रा आहार विहार कादि विजेता हो, जहां तो हम एक बार सो जाए उठना में उठने में दिक्कत होती है, बातें करते रस तत्व की, लेकिन जब फीस प्रसाद होता है तो खूब खाए जा रहे हैं। जीवा का जो वेग है वो सहन नहीं कर पा रहे हम, और हम सोच रहे आचार्य आचार्य ऐसे थे हमारे, प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हैं, या गुरु महाराज हमारे जो है वो इस तरह से। तो इतना बड़ा भ्रम है बताइए देखिए। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत पहले बता रहे हैं, वाचो वेगम मन सक्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरा सर्वाम अपी माम पृथ्वी से शिष्य। वो शिष्य बना सकता है पूरे पृथ्वी में जो छह वेग को सहन कर सकता है। ये नहीं कि आप सब कुछ खा रहे हो पी रहे हो और आचार्य की पदवी प्राप्त कर ली और फॉलोअर्स भी हो गए, यश भी फैल गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो रहा है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो समर्पित होते हैं भक्त लोग, सिंसियर होते हैं, वो पहचान जाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन में वैश्य समाज में ढोंग नहीं चलता, हिपोक्रेसी नहीं चलती है। थोड़े दिन के लिए चल जाएगा, थोड़े दिन के लिए चल जाएगा, लेकिन ये कपट जो है, कपटता से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के कितने शिष्य थे, एक ही शिष्य थे, लेकिन वो ऐसे शिष्य थे और लाखों करोड़ों के बराबर है, और उन्होंने कितने शिष्य बना दिए। अब कल को ये कहे कि वास्तव में वो उनके गुरु हैं, तो ये बेवकूफी होगी ना। गुरु तो गुरु ही है, शिष्य शिष्य है। उस दिन जैसे इज़ोलेन उमापति महाराज से पूछा था किसी ने कि महाराज हो सकता है कि शिष्य क्या गुरु से ज्यादा करे, अधिक करे, तो महाराज ने उत्तर दिया हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बोलते ये कैसे हो सकता है, फिर तो शिष्य आगे है। उन्होंने कहा नहीं, ये गुरु की इच्छा होती है तब शिष्य कर पाता है, कि गुरु की इच्छा है कि मैंने तो एक ही शिष्य बनाया है, अब तुम लाखों शिष्य बनाओ, तब शिष्य कर पाता है। तो वो सफलता भी जो है गुरु कृपा से प्राप्त होती है। तो गुरु की कृपा से जो सफलता प्राप्त होती है वो यश की वजह से नहीं है, वो कृपा है, वो गुरु कृपा है। ऐसे समर्पित शिष्य के लिए कई लोग आते हैं सेवा में, कई लोग आते हैं सहायता करने के लिए। तो जैसे गौर गोविंद महाराज को प्रभुपाद ने अकेले भेजा भुवनेश्वर है ना, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मुझे आप थोड़ा धन दे दीजिए, कुछ भक्त दे दीजिए और कुछ पुस्तकें, वहां जंगल में अकेले जा रहा हूं मैं। वहां भुवनेश्वर में जो जमीन प्राप्त हुई थी वो जंगल था पूरा। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अकेले जाओ। मैं भी अकेले गया था अमेरिका, तुम भी अकेले जाओ। तो महाराज अकेले गए जंगल में संन्यास लेने के बाद। वहां पे कोई ढाबा नहीं, कुछ नहीं, एक चाय की दुकान वहां पे थी और कोई लाइट नहीं दूर दूर तक। तो महाराज ने रह रहकर घर घर जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाकर चंदा इकट्ठा करके सबसे पहले वो पानी का लाइन लेके आए, है ना। फिर उसके बाद वो झोपड़ी में रहकर, जो चाय की दुकान थी उसी झोपड़ी में रहकर उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने उनको कहा था उड़िया भाषा में अनुवाद करने के लिए, क्योंकि ये लोग प्रभुपाद के लिए समर्पित थे। आज भुवनेश्वर में देखिए मंदिर बन गया, उसी जंगल में मंदिर बना दिया हमारा। अकेले तो गए थे, प्रभुपाद भी अकेले गए थे। रशिया में कई भक्त लोग अकेले गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि अनुयायी इकट्ठे करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो समर्पित थे प्रभुपाद के लिए, अपने गुरु के लिए, उनको ये सफलता प्राप्त हुई, गुरु की कृपा प्राप्त। तो इसलिए अपने बुद्धि को हमें हमेशा तेज रखना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन से और भक्तों के संग से, वैष्णव सेवा से। तो फिर हमें वो दृष्टि प्राप्त होगी कि हम लोग सही मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे। इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने कहा सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। तो जो हम हैं बस, जो हमारे पास नहीं है नहीं है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। किस बात का दुख है, हर व्यक्ति में अपना अपना गुण होता है, है ना। लेकिन उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, भले हमारे पास और गुण हो ना हो, हमारे हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, यह आवश्यक। इसलिए भारी लक्षणों से हम केवल प्रभावित ना हो, हमने कितना आकर्षण जागृत किया है, नाम में कितनी रुचि है, ये वास्तव में हमारे लिए परीक्षा है, टेस्ट हमारा है। वैष्णव के प्रति कितनी सेवा की भावना है, जीव के प्रति कितनी दया की भावना है, इन सबसे हम लोग अपने आप को परख सकते हैं, अपने एडवांसमेंट को। नहीं तो फिर ये जो मंत्र का उच्चारण है, हरि नाम लेना है, इसका पूरा लाभ हमें मिलेगा नहीं, हम मार्ग से भटक जाए। और कोई प्रश्न है?
ब्रह्मा जी की बात आई थी और ऐसा देख रहा था कि वैकुंठ वैकुंठ लोग के वासी है या उनका डेस्टिनेशन ऐसा कुछ था। तो ऑडियंस में किसी ने प्रश्न किया था कि जब हम उनकी परंपरा में और हम माधुर्य रस या जो भी चैतन्य माधुर्य दे रहे हैं, तो कैसे हमारे जो परम गुरु हैं।
नहीं, अभी तो हमने बताया ब्रह्म संहिता के आधार पर बताया आपको, ब्रह्म संहिता ये सवाल लीजिए, सृष्टि का सबसे पहला ग्रंथ है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को गोलोक वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ है। सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी को गोलोक वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ है। और जीव गोस्वामी ने लिखा है कि ब्रह्मा जी को यह आभास हुआ कि वो क्या है, मेड सर्वेंट, दासी है गोलोक वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी गोलोकवासी, तो इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक। और ये जो गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को काम गायत्री, ये तो गोलोक वृंदावन का है, ये मंत्र वैकुंठ नहीं ले जाएगा आपको। वैकुंठ जा सकते हैं आप जाना चाहें तो, लेकिन हाँ ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को ये मंत्र प्राप्त हो, गोपाल मंत्र प्राप्त। तो ब्रह्मा जी जो है वो गोलोकवासी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जो भगवान को भूले, कोई पूछे भाई सब पहला जीव कौन सा है, कौन है वो पहला जीव जो भगवान को भूला था, ब्रह्मा जी है वो पहले जीव। और यहाँ पर एक और बात बताई गई है, तो ब्रह्मा जी जब ये मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो उनकी ये इच्छा पूरी हुई। तो उन्होंने क्या इच्छा की, और ये इच्छा नहीं कि घर घर बनाऊं या झोपड़ी बनाऊं। तो उनकी क्या इच्छा हुई, ये सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा हुई। तो ये मंत्र ने वो पावर दिया ब्रह्मा जी को कि उस ब्रह्मांड की रचना कर सके, सृष्टि कर सके। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मा जी भी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त बने, उनकी भौतिक इच्छाएं दूर हुई। जैसे कि हम ब्रह्मभुवन लीला में भी देखते हैं ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। नहीं, क्योंकि भगवान के नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और पहले जीव है जो प्रकट हुए, इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया उन्होंने, सबसे पहले पहले जीव है।
थोड़ा सा ये दुनिया से रिलेटेड है प्रश्न, आपके पूरे क्लास से रिलेटेड नहीं है। सुबह सर साक्षी गौर का भी लेक्चर था तो उसमें, और पहले भी ये चीज सुनी है कि जहाँ जैसे क्लास मेरा बोलते हैं कि सारे ब्रह्मांड को उतार दीजिए तब मैं जाऊँगा, तो फिर ये आगे प्रश्न आता है कि जब सारा ब्रह्मांड चल जाएगा तो मटेरियल वर्ल्ड कैसे चलेगा। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरी चिंता है कि सब जीवों का उद्धार कैसे होगा, सब लोग वापस कैसे जाएंगे। तो वहाँ प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि यही भक्त का फर्ज है कि भगवान की चिंता को पूरा करना, और हरिदास ठाकुर ने कहा हाँ आपका हरि नाम सुन के। तो प्रश्न ये है कि जब भगवान और सब जीवात्माएं जो कि शुद्ध है ये चाहती है कि सब जीव चले जाए, ये चिंता को कैसे ठीक से समझा जाए कि मटेरियल वर्ल्ड चलते रहना चाहिए।
नहीं, मटेरियल वर्ल्ड चलने की बात नहीं है, वो ये प्रश्न उन्होंने इसलिए किया, उनका कि ये सब खाली हो जाएगा तो फिर इस संसार का क्या होगा, तो कोई भी नहीं रहेगा। वो एक ऐसी जिज्ञासा थी उनकी, उनकी वो इच्छा नहीं थी कि ये सृष्टि चलती रहे। लेकिन ये भी भगवान भगवान की जो है इच्छा शक्ति से हो रहा है, ये जो सृष्टि करना भी जो है ये भी सृष्टि लीला है भगवान की, भगवान की ये सृष्टि लीला है, तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और ये भी भगवान का ही राज्य है, ये जो बहिरंगा शक्ति है ये भी भगवान की अपनी शक्ति है, सृष्टि का क्या हुआ। तो भगवान की इच्छा शक्ति है, सृष्टि भी भगवान भगवान की रचना है, उन्हीं का ही है। ये सृष्टि वास्तव में ये वो स्थान है जहां पर जीवात्माओं को अवसर मिलता है, बद्ध जीवात्माओं को, ताकि यहां आकर वो धाम जा सके जो भगवान को भूल चुके हैं। जो भगवान को भूल चुके हैं उनके लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की है, ताकि सृष्टि के भीतर आकर एहसास कर सकें कि ये रहने का स्थान नहीं है, और धाम जाने की तैयारी करें। जेल में कोई रहना नहीं चाहता है, फिर भी जेल का निर्माण किया जाता है सरकार के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा जेल का निर्माण किया जाता है। अब जेल खाली हो जाए तो बोले कि जेल क्यों खाली हो गया, ऐसे इसको तो हमेशा भरा रहना चाहिए, जेल का क्या होगा, सब लोग चले गए यहां से, लेकिन कैदी तो हमेशा रहेंगे रहेंगे, आप चाहो या ना चाहो, कोई ना कोई तो जेल में आएगा ही आएगा। हो सकता है संख्या कम हो जाए या ज्यादा भी हो सकती है संख्या, लेकिन जेल जिस उद्देश्य से बनाई गई है भगवान के द्वारा, वो उद्देश्य भगवान का पूरा होगा, और ऐसे कई जीवात्मा होंगे जो उस जेल में आना चाहेंगे, तो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। वो तो एक प्रश्न किया है वासुदेव दत्त ने कि क्या होगा इस जेल का, जेल खाली हो जाएगा तो, क्योंकि जेल भी तो आपने बनाया है। ये भगवान के प्रति प्रेम है वासुदेव दत्त का, कि भगवान से इतना प्रेम है उनका कि उनको उनकी सृष्टि की भी चिंता है जिनको भगवान ने बनाया। आपका आपके घर का क्या होगा, घर खाली हो जाएगा, है ना, किराएदार सब चले जाएंगे, आप तो मकान मालिक हैं, चिंता ना करो, बहुत सारे किराएदार हैं, किराएदार हैं, सब लोग घर नहीं खरीद सकते हैं, कोई ना कोई तो आएगा किराए, मतलब कोई कोई ना कोई तो आएगा कमरा लेने के लिए। जैसे कटवारे सराय, बेल सराय, जीएस सराय में कई लड़के आते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, घर चले आते हैं, मकान वाले चिंता नहीं करते, उनको पता और भी विद्यार्थी आएंगे कमरा लेने के लिए, फिर से कमरा फुल हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से क्योंकि वो कमरा उस मकान मालिक का है, भक्त जानता है कि सृष्टि ये जो है, ब्रह्मांड है, ये भगवान की संपत्ति है, ईशावासम इदम सर्वम, तो इसलिए वो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। इस कारण से नहीं कि जेल भरा है, इस कारण से कि सृष्टि जो है ये भी जो रचना है, ये ब्रह्मांड है, ये भी भगवान की संपत्ति है, इस कारण से, और कोई कारण नहीं। बाकी उसका उद्देश्य तो स्पष्ट है कि इसके माध्यम से भगवान ने व्यवस्था की है कि मध्य जीवात्माएं जो है वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। और इसी ब्रह्मांड में भगवान ने भौम वृंदावन प्रकट किया है, हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान की, हम वृंदावन जाएं और देखें, यहाँ से तैयारी करें, और भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, वो पूरे पृथ्वी में धाम प्रकट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति वृंदावन नहीं आ सकता है, तो प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त हैं वो पूरे पृथ्वी में वृंदावन जैसा वातावरण बना लेते हैं, ताकि जब भक्त हैं कहीं भी रहकर जो है भक्ति करके धाम जाने की तैयारी कर सकें। और एक बार कोई शुद्ध भक्ति के धरातल पर आता है तो उसके लिए कुछ भी भौतिक नहीं है, ये भी आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, तो कॉन्शियसनेस है, चेतना है। वैकुंठ में रहना या वृंदावन में रहना ये कॉन्शियसनेस है। वृंदावन में रहकर भी कई लोग अगर उस कॉन्शियसनेस में नहीं है तो धाम थोड़ा जाएंगे, वो केवल वृंदावन में शरीर छोड़ने से थोड़ा धाम चल जाएगा व्यक्ति, वो कॉन्शियसनेस भी तो होना चाहिए, नहीं तो क्यों वहाँ पशु बनते हो लोग, लो धाम नहीं गए। और कई लोग तो वृंदावन जाते हैं फिर भी दिल्ली वापस आ जाते हैं जब बीमार होते हैं, जब बीमार होते हैं तो दिल्ली याद आता है उनको, राधा रानी उनको दिल्ली भेज देती वापस। अपने आप ही व्यवस्था हो जाती है, बोले जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब वापस आ जाऊंगा, वो ठीक ही नहीं होता यही शरीर छोड़ देता, बोले तुम वृंदावन में शरीर मत छोड़ जाओ, दिल्ली जाके शरीर छोड़, क्योंकि उसका वास्तव में उद्देश्य भजन करने का था ही नहीं कभी, वो चाहता ही था कृष्ण प्रेम, केवल दिखावा था। इसलिए राधा रानी देखती है कि ये तो पोल्यूट कर रहा है वृंदावन को, इसको भगाओ, है ना, घर तुमने बना लिया लेकिन शरीर छोड़ना दिल्ली में, घर बनाया भजन कुटीर बनाया वृंदावन में लेकिन शरीर छोड़ना दिल्ली में जाकर, वहां ठीक रहेगा शरीर छोड़ना, यहाँ शरीर छोड़ोगे तो पशु बनोगे। इसलिए हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त की जय, मोहन प्रभु की जय।